ओम शांति। संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टी के दूसरे सत्र में हमारे बीच उपस्थित है परम श्रद्धे आदरणीय गीता दीदी जी। आप सभी से अनुरोध है एक हाथ की ताली से हम दीदी जी का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कोमल बहन से मैं अनुरोध करती हूँ आत्मिक स्मृति का तिलक देकर हमारी दीदी जी का इस भट्टी में अभिवादन करें। आप सब शांतिवन बहुत बार जा चुके हो और दीदी को कई बार आपने सुना होगा, पीस ऑफ माइंड चैनल अवेकनिंग चैनल पे भी आपने दीदी को सुना होगा। तो दीदी का एक्चुअल परिचय मैं देना चाहूँ तो आप सबको मालूम है, फिर भी पूछना चाहूंगी कि दीदी जी का परिचय किसको नहीं है। जैसे कि दीदी जी का नाम ही है गीता, तो गीता ज्ञानदाता शिव बाबा आके हमको गीता का सार सुनाते हैं और दीदी जी की स्पेशलिटी ये है कि दीदी ज्ञान का अध्ययन बहुत करते हैं। बाबा के जो भी वर्शंस है उसका अध्ययन करके उसकी गहराई में जाते हैं, जिसको बाबा बोलते हैं मनन चिंतन करोगे तो शक्ति बनेगी। दीदी की अगर स्पेशलिटी कहे तो मनन शक्ति दीदी की बहुत अच्छी है। दीदी जी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। 50 से भी अधिक साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम गुजरात वासियों के लिए ये सौभाग्य है कि दीदी ने अपनी ईश्वरीय कैरियर की शुरुआत में हमारी गुजरात भूमि पर भावनगर सब जोन में अपनी सेवाएं दी हैं। तो दीदी आपका ही गुजरात आपसे मिलने आया है और दीदी जी को विषय भी बहुत सुंदर दिया है, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन कहो या तपस्या का फाउंडेशन कहो, वो ये है आत्मिक भाव आत्मिक दृष्टि। कोई भी मुरली बाबा की ऐसी नहीं है जिसमें बाबा ने ये ना कहा हो मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, और दीदी जी का विषय है आत्मिक प्यार की मूर्ति। तो हमारी श्रद्धेय दीदी से बहुत विनम्र अनुरोध है आज के विषय पर अपना प्रकाश डालें, और साथ ही साथ अगर आपके पास इस विषय को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो आप अंत में अवश्य पूछ सकते हैं। दीदी जी बहुत एक्सपर्ट है, दीदी जी काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, कईयों का जीवन दीदी ने बनाया है पर्सनल काउंसलिंग से। ओम शांति।
ओम शांति। ठंडी लग रही है हाँ? 2 मिनट खड़े हो जाओ फिर शरीर को गर्म करो। कैसे करेंगे? हर एक अपनी रीति से करिए। हल्का हल्का जंप करिए। खड़े खड़े दौड़िए, स्पॉट रनिंग करिए। ठंडी में योग करना अच्छा लगता है ना, क्योंकि योग में भी हम अपने मन को समेट लेते हैं और ठंडी में भी समेट कर बैठते हैं, है ना? गर्मी में खुल के बैठते हैं पर ठंडी में तो सब ओढ़ मोड़ के बैठ जाते हैं। तो योग करना भी अच्छा लगता है। देह भान में आते हैं तो विस्तार में जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष समान है। फिर हर इंद्रियों के रसों का विस्तार, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बात करने की इच्छा, खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, इंद्रिय रस, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधनों का विस्तार। पहनने की चीजों का विस्तार, खाने की चीजों का विस्तार, जानते हो ना कितना विस्तार है। गुजराती तो अच्छी तरह जानते हैं ना खाने का विस्तार क्या है। स्वादिष्ट चाहिए रे, गुजरात जैसा खाना कहीं नहीं होता है। तो कितने प्रकार के साधन और प्रवृत्तियों का विस्तार होता जाता है। और आत्मभिमानी बनना माना सार में टिक जाना, जीवन का सार हम स्वयं हैं, हम आत्मा हैं, क्योंकि हम हैं तो जीवन है, हम निकल जाएं तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो जीवन का केंद्र बिंदु हम स्वयं हैं। हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों का विस्तार फिर अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार के शौक, रस, मन की भावनाएं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बनने से मन विस्तार में चला जाता है। हमारे कंसर्न की बातें हैं या नहीं, लेकिन मन विचारों के विस्तार में जाता है। बुद्धि का भी भटकाव, तभी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती ना, क्योंकि अनेक बातों का प्रभाव बुद्धि में आ जाता है और संस्कार के वश अनेक प्रवृत्ति, वृत्ति प्रवृत्ति चलती रहती। पर जैसे ही बाबन का ज्ञान हम सबको मिला, प्रथम पाठ ने ही हमें स्व में केंद्रित कर दिया, क्योंकि सत्य पता चला ना कि हम तो व्यर्थ के विस्तार में चले गए। वैल्यूएबल हम स्वयं हैं। तो जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला और हम आत्माओं में वो अवेयरनेस आई, जागृति आई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जरूरी क्या है, व्यर्थ क्या है, रियल क्या है, इल्यूजन क्या है, ब्रह्म क्या है, रोज की मुरली से ये सद्विवेक हम सबको मिलता है। देखने में सामान्य महावाक्य, साधारण शब्द, परंतु मूल सत्य है। इसलिए विजडम मिलता है, रोज हमें सद्विवेक मिलता है। आज भी बाबा ने क्या कहा, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली मिस की माना एब्सेंट, बल सेंटर में आए, मुरली नहीं पढ़ी, सेवा भी की पर मुरली नहीं पढ़ी माना एब्सेंट हो गई। और बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि मुरली से कहीं भी तुम रिफ्रेश हो सकते हो। कभी थोड़ी उदासी, गमगिनी, मूड ऑफ होता है ना, मुरली लेकर बैठने से मूड ठीक हो जाएगा। तो मुरली से कहीं भी अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसलिए अब हम सबने अपनी स्थिति पर अटेंशन देना शुरू किया। पहले तो खुद को जानते ही नहीं तो अटेंशन की बात नहीं, समय भी नहीं देते थे। पर अब ये अटेंशन गया है कि सब कुछ मुझ आत्मा के अराउंड चल रहा है, केंद्र बिंदु में आत्मा। सेंट्रल पॉइंट हम खुद है, हमारे आसपास शरीर है, संबंध है, कर्म है, व्यवहार है, समाज है, वायुमंडल है, सब कुछ का बिंदु पॉइंट मैं खुद हूं। तो हमारा स्वयं की स्थिति के तरफ ध्यान गया है। अब देखो खुद के लिए समय ही समय है। पहले हम ही थे जो कहते थे टाइम नहीं, अब हम ही हैं जो खुद के लिए टाइम ही टाइम है। अब हमारे मुख से नहीं निकलता ना कि हमें पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं, क्लास करने की फुर्सत नहीं, ऐसा हम कभी बोलेंगे ही नहीं। हमने शरीर के साथ साथ आत्मा की भी दिनचर्या बनाई। शरीर के लिए रोज स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, श्रम करते हैं, विश्राम करते हैं। कितना भी व्यस्त हो, आगे पीछे टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, श्रम आराम कर लेंगे, क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है। उसके लिए कभी बोरिंग नहीं होता है, होता है हाँ? ये रोज कब तक नहाना, कब तक खाना, कभी ऐसा होता है? कोई ना देवे तो भी हाँ लेके खा लेते हैं। हमने अडॉप्ट कर लिया कि इसी से लाइफ है, इसी से लाइफ है। तो कोई बोरिंग नहीं है, लाइफ टाइम ये हमने स्वीकार कर लिया। इतना ही नेचुरल वे से हमें आत्मा की दिनचर्या, स्वयं की दिनचर्या को धारण कर लेना है। हमें एक्स्ट्रा ना लगे, कि ये करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ये ही लाइफ है। बाबा कहते हैं ना, रोज योग स्नान हमने अपनाया, आत्मा बाबा की याद से शुद्ध होती है। योग स्नान, दिनचर्या की शुरुआत बाबा की याद से, अमृत वेले से कर। फिर दिन भर कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई प्रभाव लगता है, इसलिए फिर शाम का योग भी रोज करते, संध्या योग। दिन भर का प्रभाव समाप्त कर लेते, उससे डिटैच हो जाते। रोज ज्ञान की खुराक लेते, मन बुद्धि को चिंतन के लिए पॉइंट्स चाहिए। अगर ज्ञान और योग बुद्धि में नहीं भरेंगे तो वे कुछ भी सोचेंगे, कहीं भी मन बुद्धि जाते रहेंगे। तो बाबा की मुरली से सब्जेक्ट मिल जाता है मन और बुद्धि को चिंतन के लिए, दिशा मिल जाती है कि कहां जाना है। तो जमीन में आप क्वालिटी बीज नहीं डालेंगे तो कुछ भी उगेगा, है ना, घास फूस उग निकलेगी, वेस्ट उग निकलेगा। इसलिए क्वालिटी बीज डालते हैं तो सुंदर, सुगंधित, उपयोगी चीजें उत्पन्न होगी। तो ज्ञान की खुराक, रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, अभ्यास में लाते, एक्सपेरिमेंट करते, अनुभव गेन करते हैं, वो शक्ति। खुराक खाने से शक्ति मिलती है ना, पौष्टिक खुराक, सात्विक खुराक शक्ति बढ़ाती है ना, इम्यूनिटी बढ़ाती है। ऐसे ही सत्य महावाक्य, बाबा का श्रेष्ठ ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ये ज्ञान मिला। रोज कर्म क्षेत्र में ज्ञान स्वरूप बनकर उतरते हैं, ज्ञान का उपयोग करते, जिससे अनुभव और शक्ति बढ़ती है। और बाबा के बन गए, आदि मध्यांत को जान लिया, निश्चिंत हो गए, बेफिकर बन गए, क्योंकि ड्रामा और बाबा दोनों हमें निश्चिंत बनाते हैं। पहले खुद ही मालिक बन, खुद ही जवाबदार बन, खुद की बातों को धोते रहते थे, पर अब तो बाबा भी साथी, ड्रामा भी कल्याणकारी। तो हम अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, विश्राम की स्थिति में रखते हैं, क्वेश्चन में नहीं है, उलझन में नहीं है, आश्चर्य में नहीं है, हम फुल पॉइंट की स्थिति में है, रिलैक्स। वो हमारा मन बुद्धि का विश्राम। तो ये दिनचर्या हम सब ने अपनाई है, और जब स्व में स्थित होते हैं, स्व को देखते हैं, तो पता चलता है, आईने में देखते हैं तो पता चलता है ना कि चेहरे पर, आंख में, नाक में, गाल में क्या ठीक करना है। इसलिए आईना देखा नहीं और अपने आप को उसमें देख लेते, बाल बाल ठीक कर लेते हैं, क्योंकि देखने से पता चलता है। स्व को जानते ही नहीं थे तो स्व को देखने का प्रश्न ही नहीं था कि खुद में क्या ठीक है क्या नहीं है। अब जब स्व को जान चुके हैं, स्व में स्थित भी हो चुके हैं, अभ्यास करते करते, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, पंद्रह, बीस साल हो गए, तो स्व में स्थित हो गए, स्वदर्शन करते हैं, कुछ भी होता है तो पहले अपने आप को हम देखते हैं ना कि इसमें मेरे तरफ से कितना परसेंटेज में भूल है, फिर खुद को पहले ठीक करते हैं। तो अब हमारा लक्ष्य बना है कि हमें वापस वही अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित होना है। अभी जो हमारी स्टेज है वो रियल नहीं है, ये तो देहभान के वश प्रभाव में आई हुई स्थिति है। बाबा ने कहा ना, खाद मिक्स हो जाती, देहभान के जो नेगेटिव बातें हैं वो आ जाती है। इसलिए शांति भी है तो गुस्सा भी है, प्रेम है तो घृणा भी है, लोभ भी है तो संतुष्टता भी, मिक्स है दोनों। और अधिकतर बाबा कहता है ना कि नेगेटिव बातों का प्रभाव अधिक है। तो मेरी ओरिजिनालिटी क्या है, मेरी असलियत क्या है, वो है हमारा अनादि स्वरूप। इसलिए शुरू में दादियां बताती हैं कि हम घंटों एक ही संकल्प में स्थित होते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान। कहते हम उसी नशे में घंटों बैठे रहते, इतना ओरिजिनल स्वरूप स्वीकार हो गया। हम जानते हैं पर हम स्वीकार करें, हमें बार बार हम खुद खुद को याद दिलाएं कि मैं वो ही शुद्ध सत्य पवित्र नित्य चैतन्य आत्मा। और उस अनादि स्वरूप के हिसाब से जब हम अपनी पर्सनालिटी को देखते हैं तो हमें स्पष्ट समझ में आता है कि कौन से गुण मेरे में हैं, कौन सी कमी है। जैसे शरीर में कोई ना कोई विटामिन्स या मिनरल्स की कमी के कारण डिसीजेज होते हैं, इन्फेक्शंस लगते हैं, ऐसे कोई ना कोई गुण और शक्ति की कमी के कारण कमजोरियां, विकृतियां, बुराइयां हमारे में आती है। जैसे प्रकाश ना होना अंधकार है, अंधकार कोई चीज नहीं है, प्रकाश का अभाव अंधकार है। इस प्रकार सद्ज्ञान, सद्गुण और रूहानी शक्तियां वो कम है या नहीं है तो हमारे में विकार आते हैं, अवगुण आते हैं, बुराइयां आती है, कमजोरियां आती है। तो हरेक अपनी पर्सनालिटी को देखिए, हरेक का अपना अपना रिजल्ट है ना, कि जो ओरिजिनल 7 गुण है हम संगम युग में उसी पर फोकस होते हैं, क्योंकि यही 7 गुण मिल करके अनेक दैवी गुण बनते हैं। हमारा लक्ष्य भी है ना कि हमें क्या बनना है। आज मुरली में बाबा ने क्या बताया कि मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है, और देवता बनना माना क्या बनना है, प्रैक्टिकली क्या बनना है। क्या महिमा है देवताओं की, देवता बनना माना प्रैक्टिकल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। देवता बनना माना प्रैक्टिकली ये बनना है, पर बाबा ने हमें उसका इजी रास्ता बताया है कि सर्वगुण संपन्न बनना है तो अपने 7 गुणों पर केंद्रित होना है। ये 7 गुण ही आपस में मिलके 36 गुण, 32 गुण, 56 गुण सर्वगुण बनते, समझा। जैसे कहते हैं ना, मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला। हाँ, ये हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था, मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला, पर उसमें से कितने कलर बने हैं, आज कितने कलर के शेड्स बने, 150 से भी अधिक, 3 रंग से इतने रंग बने। ऐसे ही 7 गुणों से ही सर्वगुण बनते हैं। शांति और प्यार से सहनशीलता बनती है, शांति और शक्ति से धीरज बनता है। आप में शांति का गुण है तो शीतलता, मधुरता, नम्रता, ये सब गुण आ जाएंगे। प्रेम है तो सहकार, सामंजस्य, ये सब गुण आ जाएंगे, भाईचारा। तो संगम युग में हम इन 7 गुणों पर कार्य करते हैं। अब आप अपनी पर्सनालिटी में देखिए हरे, कौन से गुण की कमी है। सात गुण तो जानते हैं ना सभी, हमारे जो मूल गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी सेवन ओरिजिनल क्वालिटीज है। तो अपनी पर्सनालिटी को देखिए, कौन से गुण की डेफिशिएंसी, कहीं शांत है पर प्रेम स्वरूप नहीं होते, कहीं प्रेम स्वरूप है पर शक्ति स्वरूप नहीं होते, कहीं आनंद स्वरूप खुशी की कमी है खुद में। तो ये अपना अच्छी तरह से आप डायग्नाइज करिए कि कौन से गुण की कमी है। क्योंकि उसी को भरने का विशेष पुरुषार्थ हमें करना, ज्ञान स्वरूप बाबा ने हमें बना दिया है, ज्ञान माना सत्य, हर बात का सत्य क्या है वो बाबा ने हमें बताया। लोगों को सत्य क्या है ये पता ही नहीं है, इसलिए अज्ञानता के कारण कितनी भूलें और पाप होते, क्योंकि पता ही नहीं। हम सब भाग्यशाली हैं, कल्प पहले वाली महान आत्माएं हैं, हमें बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ। ज्ञान तो सबको अनेकों को दिया गया पर हमारी बुद्धि में स्वीकार हो गया। तो बाबा का मुख्य कार्य ही ये है कि वो आकर हमें जगा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, मीन्स आत्मा को सत्य ज्ञान देकर जागृत कर देते हैं, हमें समझ देते हैं, सद्विवेक देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। बाकी का कार्य आगे हमें करना। तो जैसे ही सत्य ज्ञान स्वरूप बने, पवित्र बन गए, सत्य का परिणाम शुद्धि, पवित्रता, ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है जिसने हमें पवित्र बनाया। सद्ज्ञान के बिगर ये शक्ति नहीं आती। और जैसे ही शुद्धि हुई, शांति आई, शुद्धि से शांति की अनुभूति होती है ना। देखो, जहां स्वच्छता है वहां हमें कितना सुकून महसूस होता है। स्नान कर लेते हैं, साफ हो जाते हैं, कितना शांति आती है, रिलैक्स महसूस करते। ये रिजल्ट सबके अनुभव में है, सत्य ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति। हमारी यात्रा उससे भी आगे है, प्रेम स्वरूप बनना है, आपस में प्यार, प्रेम स्वरूप। प्रथम पाठ बुद्धि में बैठा है तो सारे देहभान से उत्पन्न हुए भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तब कहेंगे प्रथम पाठ सही अर्थ में आपने सीखा। अभी भी अगर बुद्धि में स्त्री पुरुष का भेदभाव है, जाति ज्ञाति का भेदभाव है बुद्धि में, तो आप सब आत्माओं को प्यार नहीं कर सके। भेदभाव जाति पाति का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का, देहभान के कारण तो ये सब उत्पन्न होते ना, रूप रंग का। पर आत्माभिमानी बनने से हमें स्पष्ट हो जाता है ना कि जो मैंने पहले बताया कि हम स्वयं वैल्यूएबल आत्मा है। ये तो शरीर के लेवल की सारी बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। तो जैसे ही हम आत्माभिमानी बनते हैं, हम प्रेम स्वरूप बनते जाते हैं। क्योंकि देहभान के कारण जो भेदभाव की दृष्टि हमारी बन गई थी, वो बाबा के प्रथम पाठ से ही खत्म हो जाती है। हम समझ गए कि हमें कर्म से श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, जाति की बात नहीं। तो हम सभी आत्माएं हैं, एक ही बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि जब मन में डिफरेंसेस है तो व्यवहार भी पक्षपात का चलेगा, अन्याय का चलेगा। सबके लिए प्यार नहीं रहेगा, तो समान व्यवहार नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। समझ गए ना क्यों बाबा रोज 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 अनेक बार आत्मा की बात करते हैं? क्योंकि वो ही मूल बात है। ये तो फर्स्ट लेवल का चेंज है। ज्ञान प्राप्त होते ही ये परिवर्तन आता है। हम सबके साथ योग्य व्यवहार कर पाते, क्योंकि हमारा यथार्थ मनोस्थिति जो है वो योग्य व्यवहार के रूप में बाहर आता है ना। फिर स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, शाहूकार है, पढ़े हैं, अनपढ़ है, गांव के हैं, शहर के हैं, ये सब बातें समाप्त हो जाती है। फिर घर में नौकर है, कोई भी है, हम सबके साथ रूहानी व्यवहार कर, फर्स्ट रिजल्ट। उसके आगे फिर जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, आत्मा आत्मा भाई भाई, विश्व परिवार की भावना बनती जाती। आज वो भी कितनी है ना, नेशनलिटी की भी कितनी कॉन्शियसनेस होती है ना। हम चाइनीज है, हम जैपनीज है, धर्म की कॉन्शियसनेस जिसने पूरे विश्व को विभाजित किया। पर जब हमें पता है कि हम एक ही भगवान के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, प्रभु परिवार है, प्रभु परिवार है और उसी का रिजल्ट देखो देश विदेश में। हमारे सभी भाई बहने काले गोरे पीले लाल जो भी है, हाँ, विदेश में आप जाओ तो सब मिलेंगे आपको। यहां मधुबन में आते ही थे ना फॉरेनर्स, पर वो सारे भेद समाप्त हो गए। हमारी सबके लिए शुभ भावना बन गई। ये शुभ भावना आंतरिक प्रेम स्वरूप स्थिति का ही परिणाम है, ऐसे शुभ भावना नहीं आएगी। लेकिन जब रूहानी स्थिति में स्थित होते हैं, रूहानी प्यार मन में उत्पन्न होता है, तो हर आत्मा के लिए शुभ भावना रहे, कल्याण की भावना रहे, न्याय नीति समानता की भावना रहे, अपना पराया समाप्त हो जाता है। और उसके आगे बाबा प्यार हमें कैसे करता है, प्रेम का सागर कहते हैं ना बाबा, प्यार का सागर, इसलिए दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, कल्याणकारी है, क्योंकि प्यार का सागर है। बाबा ने हमें जो है जैसे हैं हमें स्वीकार किया, क्यों? प्यार का सागर। बाबा ने कहा है ना कि आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं। हम भी बाबा से प्यार में कहते हैं बाबा मैं जो हूं जैसी हूं आपकी हूं। ये एक्सेप्टेंस, ये ही हमें भी प्रैक्टिकल करना है। जिस लौकिक परिवार में रहते हैं, चाहे जिस अलौकिक परिवार के साथ, हर सेंटर का अपना एक अलौकिक परिवार है, जो प्रैक्टिकल एक दो से मिलते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। चलो भाई बेहद में मधुबन में कभी कभी हम आते हैं, पर रोज रोज जो जहां कनेक्टेड है वहां एक दो के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारी बुद्धि में ये रहे कि हम भी आपस में नंबरवार है ना, हम सभी भी नंबरवार है, वैरायटी है। बाबा मिलने के बाद, सत्य ज्ञान मिलने के बाद भी नंबरवार पुरुषार्थी, हरेक का अपना अपना व्यक्तित्व है। पर जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं, तो हम देह भान से ऊपर उठ जाते हैं, बेहद में हो जाते हैं। तो बाबा की तरह हम भी एक दो को स्वीकार कर सकते हैं। फिर हमारा ये जो चिंतन चलता था ना पहले अज्ञान काल में, ये ऐसा है वैसा है कैसा है, हाँ, अक्सर चिंतन का सब्जेक्ट क्या होता था, आपस में मिलते थे तो भी कौन सी बातें करते, फलाना ऐसा, ये ऐसा वैसा कैसा, हाँ, ये खत्म हो जाता। जो जैसे हैं हमें बाबा का कार्य, सेवा का कार्य, पुरुषार्थ का कार्य उनसे ही करना और कराना है। तो हमारे संगठन में भी एकता आएगी, सहयोग आएगा, कॉपरेशन आएगा, है ना? फिर ब्राह्मण परिवार में भी कोई अनबन, रुठना रुसना, हाँ, मन मुटाव नहीं होगा, क्योंकि हम तो अलौकिक है ना, हम ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हैं, तो हमारे में ये बातें आएंगी ही नहीं। भगवान ने भी हम जो हैं जैसे हैं उनसे ही सारा इतना कार्य कराया ना। बेशक हम सबका ये लक्ष्य रहता है कि भले बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया जो है जैसे हैं, परंतु अब मेरा लक्ष्य है जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा मुझे बनना है। सिर्फ ये कहकर कि बाबा मैं जो हूं जैसी हूं आपकी कहकर बाबा के सिर पर पड़ना नहीं है। हम कहते हैं ये तो हमारे माथे पड़े हैं, बस ऐसे नहीं करना है। पर हमारा लक्ष्य बनता है, क्योंकि बाबा से हम बच्चों का प्यार है, तो नेचुरली जहां प्यार है वहां मददगार और सहयोगी बनने की भावना आती। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही मुझे बनकर दिखाना। प्यार करना माना उस आत्मा को एक्यूरेट समझना। देखो कई बार दुख भी इस बात का ही होता है ना कि वो मुझे पहचानते नहीं। हम साथ रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहे, पर वो मुझे पहचान नहीं सके, तो इस बात का ही दुख रहता है। हर आत्मा को यथार्थ समझना, ये उस आत्मा को प्यार कर, उसे यथार्थ समझकर बाबा ने क्या किया, हमें राइट गाइड किया, वो प्यार है, वो उस आत्मा से प्यार करना। तो हमें भी आपस में सही मार्गदर्शन देना है एक दो। कईयों को मजा आता है किसी को भटकाने में, राइट नहीं बताएंगे, जानते हुए भी खुद राइट नहीं बताएंगे, भले घूमता रहे पूछता रहे फिर आएगा ना मेरे पास, ऐसे नहीं, ये प्यार नहीं है, है ना? क्योंकि उस आत्मा को थकाना है, भटकाना है। राइट गाइडेंस दो। बाबा ने हमें सही ज्ञान दिया हर बात में, हमारे लिए शुभ भावना रखे, हमारे अवगुणों को कमियों को चित पर नहीं धरा। हम तो इतने कलयुग अंत में गिर चुके थे कि देवता बनने की बात तो कोई करेगा ही नहीं हमसे, पर बाबा ने हमारे से देवता बनने की बात की, लक्ष्य दिया, क्योंकि बाबा ने हमारी ओरिजिनालिटी देखी, हमारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखा जो कमी कमजोरी से भरा हुआ है, हमारे ओरिजिनल स्वरूप को देखा बाबा ने। तो जो बाबा हमसे करते हैं वही हमें आत्माओं से करना है, तब कहेंगे कि बाप समान, मास्टर प्यार का सागर बनते जाना। तो हमें भी आपस में ओरिजिनल स्वरूप को देख करके उससे व्यवहार करना, तो नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, ये तो सुधरेगा नहीं, पता नहीं ये क्यों आते हैं क्लास में, देवता बने ऐसा लगता नहीं है। हाँ है ना, जबकि हम तो आपस में बाबा ने मिलाया ही इसलिए है कि हम मिल करके देवता बने और बनाए। तो बाबा का सत्य ज्ञान उस आत्मा की बुद्धि में बैठा है और वो बाबा के घर समय दे रहा है, ये भी तो उसकी विशेषता है। भले ज्ञान धारण करने में नंबरवार है। एक भाई हमेशा क्लास में आते थे और आकर के बैठते ही सो जाते थे, क्लास पूरा हुआ उठ के जाते थे। कहीं सोचते थे ये क्यों आते होंगे, आते हैं बैठते हैं सो जाते हैं, फिर क्लास पूरा हुआ उठ के जाके चले जाते। पर समय भी दे रहा है, कुछ भी प्राप्ति ना करते हुए भी रोज क्लास कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी विशेषता है। कुछ तो मिल रहा है ना उसको, तभी तो आ रहा है। और हमें इतनी प्राप्ति अनुभव होते हुए भी हम कई बार अलबेले हो जाते हैं, क्लास नहीं करना है। तो हम विशेषता को देखें, तो हम प्रेम स्वरूप बन के रह सकते, क्योंकि हमें तो बनना है ना। बताया ना बाबा ने कि जो बाबा के गुण और शक्ति और स्थिति है हमें उसी को फॉलो करना है। शिव बाबा जैसी स्थिति बनानी, इसलिए शिव बाबा के ज्ञान और गुणों को हमें धारण करना है। और ब्रह्मा बाबा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि सत्य ज्ञान और स्वयं भगवान मिलने के बाद आत्मा को क्या करना चाहिए। कितना निश्चय, कितनी लगन, कितना नशा, कितना समर्पण, कितनी सेवा भावना, कितनी तपस्या। तो हमें ब्रह्मा बाप के कर्म व्यवहार को प्रैक्टिकल में फॉलो करना है। तो यथार्थ योगी ना, क्योंकि हम सिर्फ सत्य ज्ञानी नहीं, परमात्मा योगी है। हमारा योग किसके साथ है? अब डायरेक्ट परमात्मा के साथ। तो ऐसी परमात्मा योगी आत्मा कैसी होनी चाहिए? भगवान जैसी ही होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, योगी माना अंग अंग शीतल, कोई विकार की अग्नि न रहे। योगी की दृष्टि महासुखकारी। हमें दृष्टि से भी सुख देना है, विचार वाणी और कर्म से देना है, पर दृष्टि से भी हमारी स्थिति सुखकारी। तो जो निरंतर प्यार के सागर को याद करते हैं, वो स्वयं भी प्यार स्वरूप हो जाते हैं। उसके मन में ईर्ष्या, वैर, द्वेष, घृणा, नफरत, ये चीजें आ नहीं सकती। अगर हम प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मीन्स हम प्यार के सागर में डूबे नहीं हैं, भीगे नहीं, सूखे कोरे ही रहे हैं। जो मन भगवान को प्यार करता हो, वो मन घृणा नहीं कर सकता। इसलिए आप पढ़ते हैं ना कि कितने संत भक्त, समाज कितना उसका विरोध करते हैं, सितम गुजारते हैं। सुना है ना भक्तों की कहानियां, पर वो कभी भी विरोध नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, वो सह लेते क्योंकि वो भगवान के प्यार से प्रेम स्वरूप बन जाते। तो हम बाबा के बच्चे है ना, क्योंकि प्यार एक ऐसा गुण है जो आत्मा को अपनेपन की महसूसता कराता है। मेरा कोई है, जहां प्यार है वो व्यक्ति से अपनापन अकेलापन खत्म हो जाता है। आज ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि हर संबंध में स्वार्थ है तो व्यक्ति अपने आप में अकेला, और जब अकेला है तो नेचुरली भय भी लगेगा और चिंता भी होगी। तो लगे कि जैसे बाबा हमारे हैं लगता है ना, क्योंकि निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, तो सब कुछ सही मिलता है। बाबा के विचार, भावनाएं, व्यवहार, बोल सब हमें कल्याणकारी महसूस होता है। तो हमें हर गुण की पर्सनालिटी बनानी, ज्ञान के बाद ज्ञान गुण में बदलना चाहिए, नहीं तो प्रगति क्या की आपने। ज्ञान तो बाबा ने हमें दिया ना, वो कोई हमारी खोज नहीं है, वो भगवान की देन है। पर उस सत्य ज्ञान को गुण और शक्ति में बदलें तो कहेंगे पर्सनालिटी बने, स्वरूप बने, मूरत बने। ऐसा प्यार स्वरूप तो ईश्वरीय परिवार महसूस करेगा कि हमारे बीच में ऐसा कोई है जो बाबा की तरह हमें चाहते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। ये हम सबसे अनुभव करें सभी, है ना। अब जब समय परिस्थितियों का, हलचल का, और बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ गिरने का है, ऐसे समय में बाबा कहते हैं ना उन आत्माओं के पास लोग आएंगे, वो आत्माएं ऐश्लम बनेगी जहां से ये प्राप्तियां होंगी। हमारे से प्यार मिले, सुख मिले, खुशी मिले, शक्ति मिले, सद्ज्ञान मिले, वो आत्माएं ऐश्लम बनेगी। तो हम सबका अभी के समय अनुसार स्वरूप मूरत बनने का समय है, है ना। लंबे समय से हम पुरुषार्थी रहे हैं, अपने आप में हमने बहुत भरा है बाबा से, रोज सद्ज्ञान, यज्ञ का प्यार, ईश्वरीय परिवार का प्यार और साथ, तो हम सबकी स्थिति भी बाप समान बनती जाए। ये प्रैक्टिकल अभी हमें आपस में अनुभव हो, लौकिक परिवार वाले भी अनुभव करें कि हमारे बीच में ऐसा योगी है जो हमें भी पार उतारेगा, हमें भी तारेगा। इसके निमित्त भी हम बच जाएंगे, ऐसा अनुभव करें। ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद करेंगे।
से चलें, प्यार प्रभु का लुटाते चलें,
देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चलें।